نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم پیغام قرآن پارا نمبر 15 یہ پارا سورة بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے پوری سورة ہے اس میں اور اس کے بعد پھر سورة الکاخف کا ابتدائی حصہ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورة بنی اسرائیل میں اس پارے میں آپ کے میرے لیے کیا ہے سورة بنی اسرائیل کے مضامین کا اگر جائزہ لیا جائے تو پہلی آیت سفر معراج سے متعلق ہے جس میں سفر معراج کا وہ حصہ جس کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے یہ زمینی سفر تھا اس میں اللہ کے نبی کو مہجر یعنی مدینہ منورہ دکھایا گیا اور راستے میں کچھ قوموں سے گزرتے ہوئے آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تھے جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورت نجم میں آئے گا پھر آیت نمبر 2 سے 10 2 to 10 بنی اسرائیل کے لیے عبرت اور نصیحت اس قوم کی ہسٹری کو سامنے رکھ کر یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک آئینہ دیا کہ دو دفعہ کا عروج اور دو دفعہ کا زوال یہ کسی بھی قوم کا اچانک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک مہلت کا وقت دیا ہوتا ہے قومیں جب اچھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دیتے ہیں ورنہ ان کے دشمنوں کو غالب کر دیتے ہیں پھر آیت نمبر 11 سے 22 11 to 22 پوری نو انسانی کے لیے عبرت اور نصیحت ہے اس میں اور وہ عبرت اور نصیحت کس بات کی ہے کہ کائنات پہ غور و فکر کرو تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ ید الانسان بالشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا یعنی انسان کی طبیعت میں کچھ اس قسم کی جلد بازی رکھی گئی کہ انسان بعض دفعہ اپنے ہی بارے میں غلط باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے بعض دفعہ جو اس کو نہیں کہنا چاہیے اور جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا پھر آیت نمبر 23 سے 40 اسلام کی معاشرتی ہدایات ہے وہ خوبصورت چیزیں جو ہر شریعت میں رہیں اور اس کی ریفارمڈ شکل اسلام کی صورت میں آپ کے میرے سامنے آتی ہے حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد کا خوبصورت مجموعہ اور آیت نمبر 41 سے 60 میں پھر مشرقین مکہ کے ساتھ کشمکش ہے جو اللہ کے نبی کے حق کے پیغام کو دینے کے نتیجے میں پیدا ہوئی آیت 61 سے 65 ابلیس کی انسان دشمنی شروع سے ہی دشمنی کا بیج ڈالا گیا اور وہ پھر ساتھ ہی ساتھ چلتا گیا آیت 66 سے 70 میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کی بات ہے اور آیت 71 سے 100 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے اور آیت نمبر 101 سے لے کر 104 بنی اسرائیل کا ماضی اور مستقبل نام چونکہ نام بنی اسرائیل ہے تو اس میں شروع اور آخر میں انہی کی باتیں اور پھر آیت نمبر 105 سے 109 عظمت و تاثیر قرآن یعنی قرآن پاک کی عظمت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے کیسے یہ انسانوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر 110 اور 111 توحید باری تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ سے سورت شروع ہوتی ہے اور کبرہ تکبیرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں کے ساتھ سے سورت پوری ہوتی ہے اور اگلی سورت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے تو یہ ہے وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتی ہے اور کس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اب دیکھیں گے ہم آیتوں کے ساتھ چلتے ہوئے سورت بنی اسرائیل کو آیت نمبر 1 سفر معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے کیسے ناممکن کو ممکن میں بدلا گیا اور اصل میں یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بھی بنا اور ابو بکر کو صدیق بننے کا ذریعہ بھی بنا یہی واقعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درجے کو بلند کرتا ہے اور جھٹلانے والوں کے اندر شک اور شبہ پیدا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور وقف سفر معراج میں مسلمانوں کو بہت سے تحفے ملے جس میں 5 نمازیں ہیں کہ 5 پڑھنے پہ 50 کا اجر ہے ایک عمل 10 سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے توحید پہ جو جائے گا اس کی بخشش کا وعدہ بھی ہے اور اسی طرح سے بہت ہی خوبصورت سفر اس کو سننا چاہیے اس کے بارے میں اگر آپ اللہ کے نبی کا سفر معراج جاننا چاہیں تو رجب کا لیکچر سن لیجئے اس میں الحمدللہ یہ واقعہ تفصیل سے آتا ہے پھر آیت نمبر 2 سے 3 ہدایات ربانی کا لب لباب اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیجئے قومیں جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو توڑتی ہیں اور اس کے ساتھ نہیں چلتی اور خاص طور پہ जब उनके अंदर सरकशी आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सज़ा भी देता है। और तौहीद वो दौलत है कि जो अल्लाह ताला की मदद को लेकर आती है, लेकिन जब लोग इसी का दामन छोड़ दें और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को वकील बनाने लगें तो फिर अल्लाह की पकड़ भी आती है। आयत नंबर 4 से 7, बनी इसराइल पर उरूजो जुरबाल के 2 अदवार। तारीख से अगर झलकियाँ दी जाएँ तो वाकई इस कौम के ऊपर 2 अरूज के दौर गुजरे, 2 जवाल के। उरूज के दौर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, और जवाल तो इनका बहुत तवील है। कौमों के इन सारे मामलात को अल्लाह ताला ने हम सब के लिए पेश किया, और आज भी अगर उम्मत मुस्लिम अपने हाल पे नज़र डाले तो हमें जवाब मिल सकता है कि हम उरूज से गुज़र रहे हैं कि जवाल से, और अगर जवाल है तो उसकी वजह क्या है, और वो सरकशी और नाफरमानी है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को यहाँ पे पैगाम यही देते हैं कि अल्लाह की सुन्नत एक ही है, कल के दौर के मुसलमानों के साथ भी और आज के साथ। तो लिहाजा अगर तुम अपनी इसलाह कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी बेहतरी और अरूज का रास्ता दिखाएगा। फिर आयत नंबर 8 से 10 से पता चलता है कि अरूज के हसूल का ज़रिया कुरआन मजीद है। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मोमिनीन। तो क्या पता चला कि जब इस किताब को पकड़ेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। इन्ना अल्लाह यरफ़ बिहादल किताब अक़वामन वयदउ बिहा आखरीन। और अगर इस किताब का दामन छोड़ देंगे तो फिर वही होगा जो अमूमन होता है ऐसे वक्तों में, और आज हमारी उम्मत इसी चीज़ के अंदर है। अपने आप को अगर हम देखें तो किस तरीके से एक रस्सी हाथ से छुटी हुई दिखती है, जितनी जल्दी ये रस्सी हमारे हाथ में आएगी अल्लाह ताला की मदद और उसकी रहमत भी उतनी ही जल्दी हमारे साथ आएगी। हकीकत ये कि अगर हम इस कुरान को एक सेवियर बना लें तो आज भी इस फितनों के दौर में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ढारस बन सकता है। फिर इसके बाद देखिए कि आयत नंबर 11, अल्लाह ताला से मुअय्यन शय नहीं बल्कि भलाई मांगो। बस जब इंसान को ऐसी चीज़ मांग लेता है, वयदुल इंसान बिशर्री दुआहु बिल खैर वकान अल इंसान अजूला, कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है जो उसके हक में अच्छी नहीं होती या फिर उस चीज़ के तकाजे नहीं निभा पाता इंसान, तो बेहतर है कि अल्लाह ताला से इस तरह दुआ किया करे कि अल्लाह मेरे हक में जो चीज़ बेहतर है वो मुझे दे, और जो चीज़ मुझे दे वो मेरे हक में बेहतर कर दे। इस तरह खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला से मांगिए कि फिर जब चीज़ मिले तो फिर वो आपको भी सूट करे। फिर आयत नंबर 12, रात और दिन अल्लाह ताला की 2 रहमत भरी निशानियाँ हैं। रात छुपाने वाली है, दिन खुला मुबसिरा फजल को तलाश करने का जरिया है। ये सब कुछ कायनात में रात दिन आपको मुझे दिखाते हैं कि कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे। हालात बदलते रहेंगे, तुम ना बदलना, दोनों में ही अल्लाह ताला के मती और फरमाबरदार होने की दलीलें हैं। आयत 13 से 14, कोई शय मनहूस नहीं, अगर कोई नहूसत है तो तुम्हारे अपने आमाल की है, क्योंकि कुल बकुल इंसान अलज़मनाहु तायरहु फ़ी उनुकिह। यानी जब भी कभी हम किसी मुश्किल में फंसे तो समझ लें कि अपने किसी गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं, और नामे अमाल की हिफाजत करनी चाहिए। आयत नंबर 15 से 17, कौमों पर अजाब इतमामे हुज्जत के बाद आता है। यानी अल्लाह ताला किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ लेते जब तक के लोगों तक पैगाम ना पहुँच जाए, और जब पैगाम पहुंच जाए और लोग ना माने तो फिर अल्लाह की सुन्नत यही है कि वमा कुन्ना मुअज्जबीन हत्ता नबअस रसूला, और अगर लोग ना भी माने तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आ जाती है। फिर आयत 18 से 22, तय कर लो तलबगारे दुनिया हो या आखरत, कैसे तुम्हें आखरत भी चाहिए और दुनिया भी, तो फिर अल्लाह ताला के साथ ही ताल्लुक़ रखो। दुनिया भी अल्लाह ही देगा, आखरत भी वही देगा। हाँ, सिर्फ दुनिया मांगोगे तो सिर्फ दुनिया मिलेगी, आखरत मांगोगे तो साथ दुनिया भी मिलेगी। फिर आयत 23 से 25, अल्लाह के बाद हक वालदैन का है, और ख़ास तौर पे यहाँ बूढ़े वालदैन के साथ ताल्लुकात की बुनियादें हैं कि बहुत कमज़ोर हैं ये, दिल इनके छोटे हैं, आप गिने हैं, टूट ना जाए। और हकीकत यह है कि ये चंद दिन के मेहमान हैं तुम्हारे पास, इनके जाने का वक्त करीब आ रहा है, ऐसा ना हो कि बाद में तुम इनको देखने को भी तरसो। तो अपनी आवाज़ों को पस रखो, तुफ भी ना हो कहो, क्योंकि उससे इनके दिलों के चिराग बुझ जाएंगे। तो बूढ़े माँ बाप के साथ बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का सलीका सिखाया गया। आयत नंबर 23 से 30 अल्लाह की राह में खर्च करने के हवाले से कुछ हिदायात हैं कि अपने माल को ना तो बहुत ही ज़ाया कर दो, फैला दो, और ना बिल्कुल कंजूस बनो, यानी ज़रूरियात पे भी लगाओ, ख्वाहिशात पे भी लगाओ, लेकिन दिखावे पे नहीं लगाओगे। नीड्स पे भी इंसान लगा सकता है, वॉन्ट्स पे भी लगा सकता है, लेकिन फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं लगा सकता। आयत 31 से 35 माल, जान और आबरू के तहफ्फुज़ के लिए हिदायत के अल्लाह ताला ने तुम्हारा माल भी दूसरे पर हराम किया, तुम्हारी जान भी और इज्जत भी। तो वला तक्तुलू औलादकुम खशयत इमलाक, तुम एक छोटे बच्चे की जान भी नहीं ले सकते सिर्फ इस गम से कि तुम उसको खिला नहीं सकते, इमलाक, मुफलसी। तो याद रखो कि नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हें भी और उसको भी हम ही खिलाते हैं। आयत 36 इल्म की फजीलत जो हर जगह होती है। वला तकफु मा लैस लक बिही इल्म, इन नसम अवल बसर अवल फुआद कुल्लु उलाई का कान अनहु मसूला, यानी अपनी बॉडी लिम्स को बेकार चीज़ों में ना लगाओ, लोगों की सू ना लो, जिस चीज़ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं उसके पीछे मत पड़ो। आयत 37 अपनी औकात पहचानो, क्योंकि वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम पहाड़ों जितने बुलंद नहीं हो सकते, और इन नकलन तहरिकल अर्दा, ज़मीन भी नहीं फाड़ सकते, तो फिर क्या ना करो, वला तम शिफिल अर्दी मरहा, अकड़ अकड़ के चल के ना दिखाओ। आयत 38 से 40 अल्लाह का हर हुक्म हिकमत का पैकर है। अल्लाह ताला ने आपको मुझे हिकमत से खाली कोई चीज़ नहीं दी। जब हमारी ज़िंदगी में हिकमतें आ जाती हैं तो अल्लाह ताला फिर हमारी ज़िंदगी में खैर और बरकत भी डाल देते हैं। फिर आयत नंबर 41 से 44 अल्लाह ताला की बुलंद शान, बहुत प्यारी शान है मेरे मालिक की, हम उस पर नज़रें लगा लें तो हम कभी उसके सामने सर भी ना उठाएं। सुबहानहू व तआला मा यकुलूना उलूवन कबीरा। फिर आयत 45 से 48 में सरदाराने कुरैश की महरूमी, चिराग तले अंधेरा, उन्जुर कैफ दरबू लकल अम्साला फदल्लु फला यस्ततीउना सबीला, और वो बातें जो अल्लाह के नबी के सामने रखते थे कि ये कैसे और वो कैसे। और आयत 49 से 52 में आखिरत के हवाले से 3 तंजिया सवालात हैं कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वकालु इज़ा कुन्ना इज़ामम व रुफातन आ इन्ना लमबूसून खल्कन जदीदा, पता नहीं हम दोबारा जियेंगे नहीं, ऐसे ही बातें ही हैं, पता नहीं हर वक्त डराते रहते हैं, ये स्टाइल था उनका। फिर इसी तरह से आयत नंबर 53 इंसान की खुश कलामी शैतान की नाकामी है। अच्छे बोल वाला दिलों में भी रहता है, ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, ज़ुबान का इस्तेमाल छुरी से ज़्यादा कैंची से ज़्यादा एहतियात से कीजिए, क्योंकि वक़ुल्ली बादी यक़ूलुल्लती ही अहसन इन्न शैतान यंज़ुबई नहुम। तो शैतान बस दफ़ा गलत फहमियाँ डलवाता है, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, अपना ही इंसान नुकसान कर लेता है। आयत 54 से 55 अल्लाह ताला तमाम इंसानों के हाल से वाकिफ है, तुम उससे छुप नहीं सकते। व रब्बुका अलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द। आयत नंबर 56 से 57 अल्लाह ताला के महबूब बंदों का हाल क्या होता है, वो अल्लाह ताला के आगे झुके होते हैं, दबे होते हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि यब तगू नीला रब्बिहिमुल वसीला, वो रब का कुर्ब चाहते हैं, वो रब के करीब होना चाहते हैं, लेकिन सही तरीक़ों से और जायज़ तरीक़ों से। फिर आयत 58 दुनिया की हर बस्ती फना हो कर रहेगी जी, वाइम मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामा। तो हकीकत यह कि हर चीज़ बनी ही बिगड़ने के लिए है। आयत 59 फरमाइशी मौजज़ा ना दिखाने की हिकमत, वो तो बहुत चाहते थे बहुत कुछ मिला है, लेकिन वमा मनाना अन नुरसिला बिल आयाती अन नुरसिला बिल आयाती इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून। तो ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी है कि आपकी हर फरमाइश पूरी की जाए। आयत 60 आयाते मुतशाबिहात, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेराज के मौके पे दिखाई गईं, उसी में से एक शजरतल मलूनत फिल कुरान उसका जिक्र है, और ये चीज़ कुछ लोगों के लिए फितने का जरिया बन गई। आयत 61 से 65, इबलीस की इंसान दुश्मनी। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस। और इधर तो पूरी धमकियां दे रहा है कि मैं इसकी औलाद को खाऊंगा और इसके साथ अपने मामले बिगाड़ूंगा, और हम कितने आराम से इसके हाथों में तरने वाला बने होते हैं। फिर आयत 66 से 69, अल्लाह ताला के एहसानात, इंसानों की नाशुक्री। अल्लाह ने क्या किया? रब्बुकुम अल्लज़ी युज़जी लकुम अल-फुल्क फिल बहरी लितबतगू मिन फ़ज़लिही। लेकिन लोग इन्हीं जगहों में जाकर गलत काम करते, और सबसे ज़्यादा गंदगी और फहाशी आपको सी साइड पे नज़र आती है, तो ये इंसान की नाशुक्री है। फिर आयत नंबर 70, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो तुम अपने आप को नीचे ना गिराओ, अल्लाह ने तुम्हें जो इज़्ज़त दी उसको कबूल करो। वलकद करमना बनी आदम, जब अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी तो फिर तुम उस इज़्ज़त को संभालो। आयत 71 से 72, जानबूझकर सरकशी करने वाला रोज़े क़यामत अंधा होगा। यानी ऐसे लोगों को दुनिया में आंखें दी लेकिन उन्होंने फ़ायदा ना उठाया। तो वमन का नफ़ी हाजी आमा फ़हुव फ़िल आख़िरती आमा वादल सबीला। अल्लाह ताला इन आंखों की कदर करने की तौफीक दे। 73 से 75, काफिरों को दुश्मनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि कुरान से थी। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि दिल में जब बुग़्ज़ होता है तो वो बात कहने वाला भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए फरमा वइन कादुलयस्तफिज़ूनक मिनल अर्दी, कि ये तो अपनी आंखों से फिसला कर आपको निकाल दें। और हकीकत है कि इनको कुरान अच्छा नहीं लगता, और जब ये इस किताब के दुश्मन हैं तो फिर ये आपके भी दुश्मन हो जाएंगे। आयत नंबर 76 से 77, हिजरत का मरहला आने वाला है, उसके इशारे हैं इन आयतों में कि अब आप तैयारी कीजिए। सुन्नत मन कद अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजीदु लिसुन्नतिना तहवीला। जब कौमें कदर नहीं करती तो अल्लाह अम्बिया कराम को वहाँ से निकाल देते हैं। फिर आयत 78 79, 5 वक्त नमाजों के वक्त हैं इधर, यानी 5 वक्ता नमाजों का हुक्म इशारतन इधर आपको दिख रहा है। अकीमिस सलात लिदुलूकि शम्स इला गसक़िल्लैल व कुरान अल-फज्री इन कुरान अल-फज्री का न मशहूदा व मिन अल-लैल, और इससे आगे तक। फिर आयत 80 से 81, हिजरत गलबा दीन का आगाज़ है, दुआएँ सिखाई जा रही हैं। वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरज सिदकिन व जअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और साथ ही वकुल जाल हक व जहकल बातिल, ये खुशखबरियाँ भी दे दी गईं। आयत 82, उरूजो ज़वाल कुरान से वाबस्ता है, क्योंकि व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमा। तो इस किताब को पकड़ लेंगे तो उरूज है, इसको छोड़िए तो ये ज़वाल का ज़रिया बनेगा। आयत 83 84, दुनिया के हालात का तासुर मत लो। बस दफ़ा इंसान की कैफियत क्या होती है? व इज़ा नमन अलल इंसान यारदा, यानी जब नेमतें होती हैं तो मुँह ही फेर लेता है और एक साइड पर ही हो जाता है, और जब उसको कोई शर पहुँचता है, कोई तकलीफ़ आती है, कान यूसा, तो डिप्रेस, परेशान, दुखी। अल्लाह ताला कहते हैं रिलैक्स रहो, अपने अपने काम करो, अल्लाह ने तुम्हें जिन हालात में पैदा किया है तुम्हारा हिसाब उन्हीं पे होगा। आयत नंबर 85, रूह की हकीकत अल्लाह ताला ही जानते हैं। व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्री रब्बी। तो रूह का लफ्ज़ जिस्म में रूह के लिए, और इसी तरह वही इलाही के लिए, और जिब्राइल अमीन के लिए आते हैं। और देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें अल्लाह के हुक्म से ही आती हैं, जिस्म में या दुनिया में। आयत 86 से 87, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फ़जल नज़ूले कुरान। और आपके मेरे ऊपर नहीं है? आपकी मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? अल्लाह की ये किताब, इसको समझना, समझाना, सीखना और सिखाना। लेकिन अल्लाह ने इसमें डरा भी दिया, वल इन शे नल नसहबन्न बिल्लज़ी ओहैना इलैक। तो बहुत डरते हुए इस कुरान की खिदमत किया करें। अल्लाह कहते हैं एक सेकंड में तुम्हारे सीनों से इसको छीन के ले जाऊं। तो जब हम इसका हक नहीं देंगे तो फिर ऐसा ही होगा। आयत 88 से 89, कुरान जैसा कलाम कोई पेश नहीं कर सकता, न कर सका और न कर सकेगा। छलिंजे खुल्ला पुल लई निजतमा तिलिन सुवल जिन वाला या तो भी मिसली हाजल कुरान ला या तू न भी मिसली ही। तो आज भी ये चैलेंज मौजूद है, बड़े से बड़े थिंक टैंक जमा हो जाए और इस किताब जैसी को बना दें तो बनाने की कोशिश उनकी नाकाम होगी। आयत 90 से 93, फरमाइशी मोजज़ात की फहरिस्त। ऐसे लगता है किसी बच्चे से कहा जा रहा है या फिर कहने वाला खुद कोई बच्चा है। वक़ालू लन्नो मिन लक हत्ता तफजुर लना मिन अलअर्दी यंबुआ, कि अच्छा जी पहले आप ज़मीन में एक कुआं खोद दें फिर हम आपको मानेंगे। अच्छा फिर आपको कोई बाग हो खजूरों का अंगूरों का, फिर उसके अंदर एक नहर भी हो। अच्छा, नहीं आप ऐसा कीजिए आसमान को हमारे ऊपर फेंकिए जैसे कि आप कहते। अच्छा फिर ये भी नहीं तो होता थी अबिल्ला ही वल मलाइकति कबीला, अल्लाह ताला और फरिश्ते हमारे मुकाबले में आए हैं ना। समझी की बातें, कैसे इंसान अपने हक में ही बुरा मामला करता है। तो कौमें मोजज़े मांगती हैं और फिर उसको निभा नहीं पाती। आयत 94 से 96, तमाम रसूल इंसान ही थे। इस पे दिल जमा लेना चाहिए। अल्लाह ने नबुवत का ताज इंसानियत के सर पे ही रखा। कालू अबास अल्लाह बशर रसूल, अल्लाह कहते यस बस बशरियाते हैं, अगर दुनिया में फरिश्ते होते तो फिर हम फरिश्तों को भेजते। आयत 97 से 100, गुमराहों का अलमनाक अंजाम। कैसे लोग दुनिया में जब गुमराह होते हैं, वमै यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमै युद्लिल फलन तजिद लहु मौलिया मिन दूनिही, तो गुमराहों का जो अंजाम है वो बहुत ही बुरा है। आयत 101 से 103, फिरौन की हठ धर्मी और बर्बादी। यानी वलकद आतैना मूसा 9 आयातें बय्यिनात, अल्लाह ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियाँ दी थीं, कौम के पास सारी हुज्जतें भी तमाम हुई थी, लेकिन फिरौन के नसीब में चूंकि हिदायत नहीं थी और जो उसके पास खुद नहीं था वो दूसरों को कैसे देता, और इस तरह से बर्बाद तो हो गया लेकिन हर धर्मी उसने नहीं छोड़ी। फ़ग़रक़ना हुवा मम्माहू जमीया। आयत 104, कुर्बे क़यामत यहूद एक मुकाम पर जमा कर दिए जाएंगे। वकुलना मिन बादिही लिबनी इसराइल अस्कुनु लर्दा फैज़ा जा अवादुल आखिरती जिना बिकुम लफीफा, यानी दुनिया बिल्कुल उसके मुताबिक सेट हो रही है जो कि सही अहादीस से हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से ऐसे वक्तों में दुनिया हो जाएगी। और ये अल्लाह ताला के प्लान के साथ सब हो रहा है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही समझदार क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह ताला की पकड़ से अल्लाह ताला के बस से बाहर नहीं हो सकता। और इसके बाद आप फिर देखिए कि आयत नंबर 105 से 109, कुरान मजीद की अजमत और तासीर। यानी इसके सामने अकड़े भी गर्दने नहीं ठहरती, बल्कि लोगों का हाल क्या हो जाता है कि जब वो कुरान पाक सुनते हैं तो वो सजदों में गिर जाते हैं, उनकी ठोड़ियों के बल वो गिर रहे होते हैं। और हकीकत में ऐसे लोग व यखिरून लिल अज़्कान यबकूना व यज़ीदुहुम खुशुआ की कैफियत में आते हैं। और फिर आयत 110, सारे अच्छे नाम और सिफात अल्लाह ही के लिए हैं। दुनिया में जितने अच्छे नाम हैं सब अल्लाह के हैं, फलहुल अस्माउल हुस्ना। और आयत 111 जो आखिरी आयत है सूरत की, तौहीद बारी ताला का खजाना। वकुलहमदुल्लम यतखिज़ वलदम वलम यकुल्लहु शरीकुम फिल मुल्की वलम यकुल्लहु वलीयुम मिन अज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। तो ये थी सूरत बनी इसराइल अपने मजामीन के एतबार से। अब इसमें से चंद हिदायात चुनते हैं अपने अमल के लिए। और अगर इन सारी आयतों को आप अलग से कहीं लिखते जा रहे हैं तो बाद में आप सिर्फ इन्हीं आयतों की डिटेल तफसीर सुन लें तो इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी लाइन ऑफ एक्शन है। तो पहली आयत है वाकया मेराज से मुतल्लिक, आयत नंबर 1, सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू। ये वो खूबसूरत खुशखबरियाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबाने मुबारक से दिलवाई गई और बाद में फिर ये मनोअन पूरी भी हुई। फिर इसके बाद आप देखिए कि मेराज एक पैगाम था कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। अल्लाह ताला की वसी शान का भी इजहार था, तुम अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को बेहतरीन करना चाहते हो तो तुम्हें नमाज अदा करनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मेराज करवाई गई आसमानों पे बुलाकर, और हमारी मेराज होती है नमाज को सही तरह से अदा करके। जितना ज़्यादा आप नमाज को सही तरीके से अदा करेंगे आपको इज्जत भी मिलेगी, बुलंदी भी मिलेगी और कुर्बे इलाही भी मिलेगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि मेराज के मौके पे जो तोहफे थे उसमें बड़ा तोहफा तो नमाज का था, तौहीद वालों के गुनाहों की माफ़ी का था, हर अमल को 10 के साथ ज़र्ब लगाए जाने का अमल था। ये सारा कुछ पढ़ते सुनते बताते हुए हमारे दिल में ये दुआ और ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह हमारी नमाज़ों को बेहतर से बेहतरीन कर दे और हमें बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों के साथ जोड़ दे। फिर उसके बाद आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप में इस पर मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतनी बरकत देंगे। फिर आयत 23 से 25, हकूके वालिदैन, वकदा रब्बुक अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना। देखिए इतने सलीके से तो नमाज में बैठना भी नहीं सिखाया अल्लाह ने, क्या पढ़ना, कैसे बैठना, पाँव किधर, हाथ किधर, नजरें किधर, ये सब कुछ हमें हदीस से मिलता है। लेकिन यहाँ माँ बाप के सामने बैठने का, बोलने का सलीका सिखाया, क्योंकि माँ बाप का हक सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो अल्लाह ताला अगर रब्बे हकीकी है, अगर किसी को रब्बे मजाजी कहा जा सकता तो वो वालदैन थे, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ कमा रब्बयानी सगीरा, कैसे एक मासूम सी जान को एक जवान बच्चे की सूरत में ढाल देना अल्लाह की मदद से, ये माँ बाप के सब्र और शुक्र का ही नतीजा है। तो हमारी भी आजजी, हमारी भी ज़मीन ज़ुबानें झुकी हुई, नरम मोहब्बत माँ बाप के सामने हो। इन आयतों पे भी एक लेक्चर है, वालदैन मेरी जन्नत या जहन्नुम। आप माँ बाप के बारे में जितना भी सुनेंगे ना, फिर आपका दिल करेगा और सुने। इसको रिक्कते कल्बी से सुनना चाहिए। बाद दफ़ा माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनमें कोई कशिश नहीं लगती, क्योंकि अब वो हमें कुछ दे नहीं सकते, तो खामखा बल्कि हम उनसे लेने के मूड में होते हैं कि अब ये कब तक बैठे हुए हैं, जल्दी से जाएं ताकि अब हमें भी इनकी चीज़ें मिलें, तो ये महरूम लोगों की बात है। फिर आए 27, फजूल खर्ची, इन्नल मुबसरी न कान इख्वान शयातीन वकान शैतान अली रब्बी ही कफूरा। बेजा खर्च करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही ना शुक्र है। एक लफ्ज़ होता है तबजीर और एक होता है इसराफ। इसराफ क्या है कि जायज़ चीज़ों पे खर्च कीजिए मगर ज़रूरत से ज़ायद, मतलब खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घरदारी इस्तेमाल करना ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि सवाब का जरिया है, लेकिन इतना ज़्यादा कर देना कि इंसान हदों से निकले। इसके बरक्स मुबज़िर कौन है, बजरा बीज डाल दें को कहते हैं, ऐसे हाथ से छीटा मारा बीज गिर गए, ये होता है गलत पे इस्तेमाल करने वाला। इसमें एक डॉलर भी नहीं लगा सकते। कोई हराम की चीज़, कोई गलत चीज़, कोई नाफरमानी की चीज़, चाहे एक पैनी की क्यों ना आए, अगर आपने उस पे पैसा लगाया तो आप मुबज़िर बनेंगे। और देखिए इख़्वान शयातीन, आज भी देखिए हमारी खुशियों के मौके पे इसराफ और है ही, तबजीर कितनी है, गुनाहों पे लगता है, नाफरमानियों पे लगता है, सरकशियों पे लगता है। फिर आयत नंबर 31, जिना की रोकथाम, वला तक्तुलू औलादकुम खशयत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन क़त्लहुम काना खित्अन कबीरा। और अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से कत्ल ना करना। वो मासूम सी जान जो अपने हक के लिए बोल नहीं सकती, झंडे नहीं उतार सकती, अभी तो जुबान भी नहीं पूरी खुली, लेकिन मालिक उनके हकूक के लिए आवाज़ उठाते इन आयतों में, ना तो इबॉर्ड करो और ना पैदा होने के बाद बच्चों को मार दो कि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, दो हाथ भी तो साथ लाते हैं। तो याद रखिए कत्ले औलाद की 3 अकसाम में से एक मारूफ किस्म, जिसको आज भी बड़े खूबसूरत स्लोगन्स के साथ मुसलमान मुल्कों में भी आम किया जाता है, दो बच्चे खुशहाल कराना। एक तरफ अल्लाह के नबी की हदीस के मैं अपनी उम्मत की कसरत पे मान करूँगा, उन ख़ानदानों में शादियां करो जिन औरतों के कसरत से बच्चे हों, और दूसरी तरफ आप देखिए कि आज उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है। अल्लाह हमारी सलाह कर दे, दूसरों की बोलियां बोलते बोलते हम अपनी भी भूल गए। आयत 36, फ़िक्र अमल के लिए इल्मी बुनियाद की ज़रूरत है, वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्न सम वल बसर वल फुआत वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। और जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान और आँख और दिल इन सब के मुतल्लिक ज़रूर बाज़ बरस होगी। तो याद रखिए ये 3 ऑर्गन्स, समात, बसारत और दिल, यही हैं हिदायत के रिसेप्टर्स या गुमराही के रिसेप्टर्स। आँखों से सही देखिए, कानों से सही सुनिए, तो दिल में सही ख्याल आएंगे, और इसका अपोजिट भी है। तो हमें इन चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करना। हम हर वक्त दूसरों के बारे में सोचते देखते और सू लेते रहें तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। फिर आयत 77 78, फजर और तहज्जुद, सुन्नत मन कदर सल न कबल कम रसुलना وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. نمازوں کی بات ہے، خاص طور پہ یہاں فجر اور تہجد کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی طرف اشارہ ہے، یہ نمازیں ادا کریں، اور ساتھ ہی فجر کا الگ سے نام لے لیا گیا کیونکہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ، یعنی فجر اور عصر وہ دو نمازیں ہیں جن کا حساب اللہ خود لیتے ہیں. دن میں دو بار اللہ تعالیٰ ہمارا نماز کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں، اور فجر میں قرآن خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے. نماز میں نہ پڑھ سکیں اگر زیادہ تو بعد میں پڑھیے، کیونکہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا یہ وقت ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے گھروں کے کیا نقشے نہ بدل گئے. پہلے صبح صبح گھروں سے نمازوں کی اور قرآن کی آوازیں آتی تھیں، نانیاں تھیں، دادا تھے، آج وہ بھی نانیاں بھی گئیں، دادیاں بھی گئیں، اور گھروں میں نہ جانے خبروں کے نام پہ اور کبھی بچوں کے فن کے نام پہ کیا الٹی سیدھی آوازیں آنے لگ گئیں. جب مسلمان اور ہنود اکٹھے تھے تو ہر گھر کے اندر سے آواز جو آتی تھی وہ بتاتی تھی کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یا غیر مسلم کا. آج تو فرق مٹ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے.